ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टः स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकान्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सारद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सर्वनन्द श्रीशाखा। हे कृष्ण करुणा सिन्धु भक्त जगतपते गोपेश गोपीनाथ तत्कथाचन पारागी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामी बारिश का मौसम है आपको यहाँ आने के लिए, लेकिन एक्चुअली में आप अगर देखो तो बारिश में थोड़ी सी जैसे बारिश हुई तो ऑफिस की छुट्टी को नहीं मारता। ऑफिस में सब लोग चले जाएंगे, नहीं बिजनेस जिसका है वो किसी ने अपनी दुकान थोड़ी ना बंद की होगी। आज के बारिश होगी अब चलो घर बैठ के पकौड़े खाते हैं या गीले हो जाएंगे भीग जाएंगे। So, इसको आध्यात्मिक आलस्य बोलते हैं कि हम लोग जो आम लोग हैं वो सोचते हैं कि भौतिक जीवन के कार्य बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों हम उसको मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि हमने काम किया उसका फल इमीडिएटली मिल जाता है। हम ऑफिस का अटेंडेंस लग गई सैलरी मिल जाएगी, हम दुकान खोली हमने तो सेल हुई तो प्रॉफिट मिल गया, इमीडिएट बेनिफिट दिखता है। लेकिन चैंटिंग का जब या आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का इमीडिएट बेनिफिट नहीं दिखाई देता। और अगर भक्ति में जुड़ जाओ तो लोग एक्चुअली को उल्टा बोलते हैं। अगर कोई भक्ति में जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे कि तुम मतलब क्या आलसी हो गए हो, तुम 24 घंटे जप करते रहते हो, माला पकड़ी हुई क्या हो गया। एक बार मैं काफी 15-20 साल पहले की बात है, मैं जप कर रहा था, माला में मेरा हाथ था, जप कर रहा था तो मैं एक रिलेटिव मिलने आए थे घर में, तो उनसे बात कर रहा था तो उनसे जैसे मिला मुझे कहते हैं पंजाबी में बोल रहा हूँ तेरे हाथ में क्यों है। तेरे हाथ को क्या हो गया। तो मैंने कहा नहीं क्या हुआ आज को, कह रहे पट्टी क्यों बांधी हुई है। तो मैंने कहा पट्टी नहीं माला है। कह रहे अरे इस उम्र में माला क्या मतलब है, क्या हो गया तेरे को, सब ठीक ठाक तो है। So, लोग ऐसी बात करते हैं कि कोई प्रॉब्लम होगी, इसका आध्यात्मिक संसारिक जीवन सही नहीं चल रहा तो चलो भैया इसने आध्यात्मिकता की शरण ले ली, भक्ति जब शुरू कर दिया सब ठीक हो जाएगा तो माला उठाकर फेंक देगा। एक्चुअली में लोग ऐसा करते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग सोच लेते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है और वो मन्नत मांग लेंगे और जब वो काम पूरा हो गया प्रॉब्लम खत्म हो गई तो वापस जो है अपने भौतिक जीवन में वापस से घुस जाओ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल अंधे होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल अंधे होते हैं। भक्ति सिद्धांत का सरस्वती ठाकुर एक एग्जांपल देते हैं, भक्ति सिद्धांत का सरस्वती एक कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं कि गांव का उसमें दो आलसी थे, सुपर आलसी जिसे कहते हैं, तो उनका लक्ष्य एक ही था कि मेरा काम ये कर दे, दूसरा सोच रहा था मेरा काम ये कर दे, और ये इनका गोल था। तो दोनों एक बार झोपड़ी में लेटे हुए थे तो झोपड़ी को आग लग गई। तो जब उसकी तपिश उनके पास पहुंची, दोनों लेटे हुए थे आलसी, तो जब तपिश पहुंची उनके पास में, तो उसने पहले ने दूसरे को बोला कि यार बड़ी गर्मी लग रही है, मतलब बड़ी तपिश आ रही है। तो उसने बोला कि तू ऐसा कर, करवट ले ले, एक करवट पर लेटे लेटे कई बार सुन्न हो जाता है ना, ऐसे अब रजाई में लेटे हो सर्दियों में, सर्दियों का मौसम है तो गर्म हो जाती है, तो थोड़ा हिलते डुलते हैं कि हाँ कंफर्टेबल हो जाए वापस। तो उसने करवट ले ले, सब ठीक हो जाएगा। तो दोनों ने एक एक करवट ले ली। तो फिर कहा यार नई बात नहीं बन रही, बड़ी तेज गर्मी लग रही है, कुछ चक्कर तो नहीं है? उसने कहा नहीं, आज लगता है सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। इधर पलट के देखने की कोशिश नहीं की कि मतलब आग लग गई है झोपड़ी में। और तो उसने कहा यार तू देख तो सही क्या हुआ, छोड़ ना क्या कर रहे, देख के अभी सब ठीक हो जाएगा, टेंशन होगी। तो ऐसे करते करते चलो जी बात, वो जब तक पूरी आग ने झोंपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और वो दोनों जो आलसी थे उसी में झुलस कर मर गए। लेकिन ऐसे लोग जो मतलब बिल्कुल बेवकूफ आलसी और रोजमर्रा के जीवन में कैसे पैसा कमाना है उससे आगे जिनमें सोचने की ताकत नहीं है, अगर कोई भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है तो उसको भगोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं, भाग क्या। तो हमारे एक सन्यासी हैं भक्ति तीर्थ स्वामी, उन्होंने एक लेक्चर में बोला, उन्होंने बोला कि मतलब अगर घर में आग लगी हुई है, ऐसे एक बिल्डिंग है उसमें आग लगी हुई है, तो बिल्डिंग में अब समझदारी क्या है कि उस बिल्डिंग में बैठे रहूं क्या, कि मैं भगोड़ा नहीं हूं तो इसके अंदर ही रहूंगा, समझदारी है बिल्डिंग से बाहर निकल के आ जाओ। 9/11 आपने सुना है ना, जब वो टेररिस्ट अटैक हो गया था यूएस पर, दो बिल्डिंग उन्होंने ऐसे प्लेन घुसा दिए थे बिल्डिंग्स के अंदर। अब वो पायलट भी बेवकूफ था, मतलब अरे अगर बिल्डिंग में प्लेन घुसाएगा तो भी तूने मरना ही है, तो कहीं और घुसा दे, तू तो मरेगा, कम से कम बहुत सारे लोग तो बच जाते। बिल्कुल सेंसलेस होते हैं लोग। तो जब 9/11 में वो अटैक हुआ, चारों तरफ से बिल्डिंग गिर रही थी, आग लगी हुई थी, तो लोग भाग रहे थे बाहर निकलने के लिए। बहुत सारे लोग थे वो अपना कंप्यूटर इम्पोर्टेंट फाइल्स उठा के भाग रहे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, अब तेरी जान जा रही है, तो डेटा के पीछे भाग रहे हैं। तो कंप्यूटर भी जल के ख़त्म हो गया, वो भी जल के ख़त्म हो गया। सो ऐसे लोग अगर बोले, लोग क्या बोले, देखो कितना डेडिकेटेड था, कितना समर्पित था अपने काम की ओर, और कितना देशभक्त था या कितना बहादुर था कि अपनी जान गवा दी उसने। तो ये एक बेवकूफी वाला दृष्टिकोण होता है। अगर आपने अगर किसी की सहायता करनी है तो पहले आपको खुद खतरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे एरोप्लेन में बोलते हैं ना कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेंगे, तो भैया सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन मास्क लगाया आप में कितनी ताकत है, ऑक्सीजन के बिना गिर जाओगे निढाल होकर, दूसरे की हेल्प कैसे कर पाओगे नहीं। तो अगर डिवोटीज भौतिक जीवन से बाहर निकल के आ जाते हैं और बाहर निकल के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की कोशिश करते हैं तो उनको भगोड़ा कहना अच्छी बात नहीं है, एक्चुअली में इंटेलिजेंस है कि आप बाहर निकलोगे, बाहर निकल के कम से कम आपने पहले अपनी हेल्प की, फिर आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो ना। आप अंदर ही खुद भी फंसे रहे और पूरा बर्बाद हो गया, मतलब पूरा घर जलना शुरू हो गया, आप भी उसमें जाके फंस गए, तो कौन सी समझदारी है कि आप जीवन खत्म हो गया, एक और जीवन खत्म, क्या पॉइंट है एक और जीवन खत्म होने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि भगोड़े हम नहीं है, तुम बेवकूफ हो कि तुम समझ नहीं पा रहे कि हम लोग आखिर में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद ने तो एक्चुअली एक जगह बोला, प्रभुपाद ने बोला कि भौतिक लोग समझते हैं कि हम क्रेजी हैं, पागल हैं, हम सोचते हैं कि ये क्रेजी है, ये पागल है। तो कह रहे हैं इसका फैसला कैसे होगा, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला इसका फैसला होगा शास्त्रों के आधार पर, शास्त्र बताएंगे कौन एक्चुअली में क्रेजी है, कौन क्रेजी नहीं है, है ना। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन उसने अपने शरीर और शरीर से संबंधित चीजों को ही देखने में लगा दिया, उन्हीं के ऊपर अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो वो एक्चुअली में बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है, क्योंकि शरीर छूट जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगी। ऐसे हमारे जो साधु महात्मा एक एग्जांपल बोलते हैं, बोलते हैं कि एक राजा था राज्य में, और उसके राज्य में एक साधु रहता था। तो जो साधु है वो राजा को बार बार कहता था, अभी कुछ भक्ति भी करो, कुछ भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो राजा कहता था कि मुझे पैसा कमाने दो, अभी मैंने अपने राज्य का विस्तार करना है, मुझे बहुत सारा धन इकट्ठा करना है, तुम कहाँ पे मुझे अपने राज्य से अलग करने पर तुम बात कर रहे हो, ये कोई पॉइंट नहीं है, अभी टाइम नहीं आया, कुछ और बात बताओ मेरे को। तो जब बार बार साधु उसको ये बात बोल रहे थे, तो राजा ने उनकी बात सुनना बंद कर दिया बेसिकली। तो साधु ने कहा चलो मैं तुम्हें आगे से ये बात नहीं कहूंगा, तुम मेरा एक कहना मान लो। तो राजा ने बोला क्या कहना मानो, तो बोला तुम अपने राज्य का एक सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढो और उसको बोलो, उसको एक डंडा पकड़ाओ, कंधे पे दुशाला डाल देना उसके, और उसको प्राइम मिनिस्टर बना देना अपने राज्य का। तो राजा ने कहा चलो ठीक है कर दूंगा जान छोड़। तो साधु कहकर चले गए। तो राजा ने ढूंढवाया कि जाओ ढूंढो कौन जो है सबसे मूर्ख व्यक्ति है हमारे राज्य का। तो कई कैंडिडेट ढूंढ के लाए, तो लेकिन जो राज्य का सेनापति है वो जा रहा था 3-4 सैनिकों के साथ में, ढूंढ रहा था सबसे मूर्ख व्यक्ति को। तो उन्होंने एक लक्कड़हारे को देखा, तो वो पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ था ऊपर चढ़ के, और जिस पे बैठा हुआ था उसी को काट रहा था, ठीक है। तो सेनापति ने बोला ओ भैया क्या कर रहा है, गिर जाएगा नीचे। तो उसने बोला तो तू लक्कड़ आ रहा है क्या, कह रहा नहीं मैं तो क्षत्रिय हूं। तो उसने कहा तू अपने काम से काम रहा, तुझे क्या पता मैं क्या कर रहा हूं। सेनापति ने कहा चल देखता हूं उसको गिरते हुए, एक पिक्चर देख के जाता हूँ ये वाली। सो जब वो लक्कड़ काटता रहा शाखा को, तो क्या हुआ, धड़ाम से नीचे गिरा, हाथ पैर टूट गए उसके। वो खड़ा हुआ बड़ी मुश्किल से, और जाके सेनापति को क्या बोला उसने, क्या बोला, हाँ आप बहुत बड़े ज्योतिषी हो, आपको पहले ही पता चल गया मैं गिरने वाला। आपको कैसे पता था मैं गिर जाऊंगा, कमाल कर दिया। तो उसने सेनापति ने बोला कि यार तू एकदम फिट आदमी है, हाँ तेरे को मैं राजभोग करवाता हूँ। तो उसको पकड़ के ले गए राजा के पास ले गए, और राजा को पूरी बात बताई। राजा ने कहा इससे बेवकूफ आदमी नहीं मिल सकता, नहीं ठीक है ना। तो इसी को बोलते ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो उसको डंडा पकड़ा दिया और कंधे पे दुशाला डाल दिया कि भैया तो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने पे एक छोटा सा महल उसको दे दिया रहने के लिए, और रह जा रहे हैं। टाइम बीत गया, पूरा राज्य उस पर हंस रहा था, सारी हरकतें उल्टी थी उसकी बेसिकली। तो राजा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, तो सारे उसको मिलने के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने बोला भाई तू भी मिला, तू तो प्राइम मिनिस्टर है भैया, प्रधानमंत्री, जाके तेरे को भी मिलना चाहिए। उसने कहा अच्छे जाके मिल के आता हूँ। तो उसने मिलने के लिए गया राजा के पास, तो राजा को बोला क्या हो गया तुम्हें, तो उसने कहा यार, तो भैया जवाब दे दिया हकीमों ने, अब तो प्राण खत्म होने वाले हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं और हकीमों को ढूंढ के लाता हूँ, सब देख लिया, कुछ नहीं हो सकता, खेल खत्म है। तो उसने कहा अच्छा, बहुत कहाँ जाओगे, कह रहे बहुत दूर जाना है, कह रहे सामान पैक करवा दो फटाफट खाने पीने का। उसने कहा कुछ नहीं ले जा सकता, थोड़े से पैसे ले जाओ, कुछ नहीं ले जा सकता, चार पांच सैनिक साथ ले जाओ। अरे तुम कहाँ बेवकूफ टगर गए, कुछ नहीं लेके जा सकता भैया, जहां पे मैं जा रहा हूँ वहां पे एक सुई भी नहीं ले जा सकते। तो उसने क्या किया, जो महामूर्ख था उसने कहा कि अच्छा चलो एक काम करो, उसने अपनी जो लाठी थी राजा को पकड़ाई करेगा, पकड़ना प्लीज। तो उसको लाठी पकड़ा दी और दुशाला उसको उड़ा दिया। राजा ने कहा ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा देखो आपने अपने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ये लाठी और दुशाला देना था, वो आप ही, जब आपको पता है भैया कुछ साथ नहीं लेके जा सकते, तो फिर मतलब पॉइंट क्या है, पूरा जीवन आपने इसमें घुसा दिया, नहीं पूरा जीवन आपने लगा दिया कि भैया पूरा मतलब बर्बाद हो जाओ अपने आप को, और लास्ट में पता है कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। और एक्चुअली में धन सुख की गारंटी है भी नहीं, जो धन है सुख की गारंटी नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊं, जब मैं जॉब कर रहा था बहुत सारे पैसे कमा रहा था, आज से 10 साल पहले, अगर आज भी कोई इतने पैसे कमा ले तो बोलेंगे यार वाकई बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ये बस 10 साल पहले कमा रहा था, लेकिन मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, रेस्ट नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था मेरे मन के अंदर। तो मैंने जॉब छोड़ी, पैसे कम हो गए, लेकिन जो हेल्थ मेरी इंप्रूव हो गई, बहुत सारी चीज़ें, मेरे मन से गुस्सा ख़त्म होना शुरू हो गया धीरे धीरे, जो प्रेशर था हट गया, गुस्सा अपने आप कम होना शुरू हो गया। तो अगर मैं आज अगर 8-10 साल के बाद एनालाइज करूं तो मेरे पास पैसे अवश्य कम है, लेकिन ओवरऑल अगर देखूं तो मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। और प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इतना पैसा कमा रहे हैं एक्चुअली में क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं कि आज अपना बैंक अकाउंट देख लिया $1,000 है, कल बैंक अकाउंट देखा $2,000 है, कह रहे इसी के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे जब तुम $1,000 कमा रहे थे तो भी प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग क्या करते थे, 2 सूखे पीस के टुकड़े खाते हैं चाय के साथ, ज्यादा खा नहीं सकते, और $2,000 कमा लिए तो क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वही 2 सूखे ब्रेड के टुकड़े चाय के साथ। मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ मेरे ख्याल से 3-4-5 करोड़ रुपया उसने कमा लिया होगा जॉब वॉब करके। तो उसका एक बार मुझे फ़ोन आया, कह रहा है और भाई क्या चल रहा है, मैंने तो अच्छे अच्छे पैसे वैसे कमा लिए, यहाँ एक मकान खरीद लिया, वहाँ एक मकान खरीद लिया। तो मैंने सोचा अच्छा तेरी हेल्थ कैसी है, तो कह रहा है यार हेल्थ बड़ी ख़राब है। अरे क्या हो गया, तो बोलता है कि शुगर हो गई, बीपी हो गया, अब शुगर दवाई से काबू नहीं आ रही, तो सुबह शाम रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूँ। आप में से किसी ने इंसुलिन के इंजेक्शन लिए हैं कभी किसी ने? ओह अच्छा, बचे हुए है ना, बच के रहना, मीठा ज़्यादा मत खाया करो। ये सब लोग जो फीस्ट में, इस्कॉन की फीस्ट में सब लोग गोल ये गुलाब जामुन और वो रबड़ियाँ खाते हैं ना, खीर, हाँ वो कभी ना कभी उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो मीठा कम खाना चाहिए, नहीं तो खूब एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपको कैलोरीज जलाओ तो ठीक रहेगा सेहत, नहीं। मेरे फादर को भी एक्चुअली शुगर थी, तो सुबह शाम उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे, बिना इंजेक्शन लगाए खा नहीं सकते थे वो, क्योंकि जैसे कुछ खाएंगे एकदम से शुगर शूटअप कर जाती है, अगर आप में से लोगों को पता हो किसी को, तो अगर वो काबू नहीं किया इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, बेहोश हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और इंसुलिन का इंजेक्शन बड़ी पतली सी नोक होती है उसकी, और लोग बोलते हैं पेनलेस इंजेक्शन, लेकिन मुझे पता है, मैं अपने फादर को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता था, बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत पेन होती है। नॉर्मल सी बात है, कोई आपको स्विच चबाएगा भैया दर्द होगी, है ना, स्विच चबाएगा दर्द होगी। कई बार मुझे कहते थे यार फेंक यार छोड़, जो होना देखी जाएगी। मैंने कहा होना क्या देखी जाएगी, आपको लगाना पड़ेगा इंजेक्शन। तो एक बार कोई इंसुलिन का इंजेक्शन शुरू करते उसको लगाने पड़ते हैं, तो उसने कहा मेरे से छोटा है एक्चुअली, मैं करीब 8-10 महीने छोटा है मेरे से वो लड़का जो मेरा फ्रेंड है, तो रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं सुबह शाम, दवाइयाँ खा रहे हैं। तो एक बार मैं उसके घर गया तो आम का सीजन था, तो मैंने कहा चला यार आम खाते हैं, कह रहा यार तू ही खा ले अगर आम खाया तो मुझे इंसुलिन की डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी तो ऐसे पैसे से मींस क्या लाभ है एक्चुअली में, है ना, कोई खास फायदा नहीं है। तो जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं उनको एक चीज समझनी, दो चीजें समझनी पड़ेंगी एक्चुअली में, एक नहीं, पहली बात क्या समझनी पड़ेगी कि अगर हमने कितना भी पैसा कमा लिया लास्ट में छोड़ के जाना पड़ेगा। जितना भी कमा लिया, कोई व्यक्ति 100 रुपया छोड़ के जाएगा तो कोई व्यक्ति 500 अरब रुपए छोड़ के जाएगा, लेकिन छोड़ के सब चले जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मतलब जो थोड़ा बहुत 1% साथ में ले गया कुछ साथ नहीं लेके जा सकता, सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बात में लोग आपको एक तर्क दे सकते हैं, वो तर्क ये दे सकते हैं कि यार पता नहीं कब तक जीना है, नहीं पता नहीं कब तक जीना है, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो ये पैसे होंगे तो कम से कम हम अगर कोई बीमारी हो गई इलाज करा लेंगे, कुछ मतलब कहीं पे चाहिए इमरजेंसी हो गई तो पैसे का यूज कर लेंगे। हाँ, तो दूसरा जो बात है उसको याद रखनी चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, पैसा उतना ही कमाओगे जितना आपके भाग्य में है। कई लोग आप देखोगे, हो सकता है आपका व्यक्तिगत अनुभव भी हो, कई लोग होते हैं बिल्कुल मेहनत नहीं करते और पैसे ही आए जा रहे हैं, यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, ऊपर से नीचे से, मतलब ढेर लगा हुआ पैसे का। हाँ, देखा आपने ऐसे व्यक्ति को, तुमने देखा तुम्हारी टैक्सी का मालिक है कुछ नहीं कर रहा पैसे कमाए जा रहे हैं, एक सेठ जी है नहीं कुटिया वाले, कुटिया वाले सेठ जी। सो पैसा मतलब आएगा, कहे नहीं चाहिए, नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें, ऐसी हालत हो जाती है। पैसा अगर भाग्य में है तो भैया आके टकराएगा, अगर भाग्य में नहीं है तो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, एड़ी चोटी का जोर, मतलब कुछ हो नहीं सकता, आप कितना ही मेहनत कर लो पैसा कमा ही नहीं सकते एक्चुअली में। अगर भाग्य में नहीं है तेरे भैया, क्या मतलब एड़िया को रगड़ रहा है, आराम से चलता रहे, जितना तेरे भाग्य में उतना तेरे को मिलता रहेगा एक्चुअली में। ये बात अगर किसी को समझ में आ गई, मेरा एक फ्रेंड था सरदार, वो मतलब जिसे कहते ना काम चोर नलायक, मतलब कमीना टाइप एम्प्लॉय जो होता है काम नहीं करना पैसे भैया सैलरी आ जाए काम खत्म, इधर से जुगाड़ उधर से जुगाड़। मैंने उसको कई बार कहा, मैंने कहा सरदार तू तो पेंशन पे जी रहा है भैया, काम तो कुछ करने ना आता है, सुबह हाजिरी लगा देता है अपने, बस सैलरी पक्की हो जाती है तेरी, हम रगड़ रहे हैं। तो कहता तू क्यों नहीं कर लेता ऐसे। मैंने कहा यार हमारा दिमाग ही नहीं चलता ऐसे, हम तो जब तक काम नहीं करेंगे पैसा नहीं कमाएंगे। कहता है यार तू बेवकूफ है। और वो आज भी अच्छे मतलब 70-80 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। तो पीछे एक कंपनी जिसमें काम कर रहा था वो कंपनी की हालत खराब हो गई, ऐसे एम्प्लॉय होंगे तो खराब होगी, तो किसी दूसरी कंपनी में चला गया नोकिया में। तो मैंने उससे कोई 4-5 साल के बाद बाई चांस ऐसे कुछ फोन वोन पर बात हुई, उसे एक्चुअली मुझे एक जॉब ऑफर कर रहा था वो। तो मैंने कहा मुझे जॉब तो नहीं करनी, लेकिन तू बता कैसा चल रहा है। कह रहा है यार बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी सही नहीं चल रही, कंपनी ना लोगों को छटनी करने के लिए कह रहा है। तो मैंने कहा तेरी नौकरी तो बची हुई है ना। कह रहा कंपनी ने मुझे कहा लिस्ट बनाने के लिए किसको दिखा तो काम ही नहीं किया उसने पूरी जिंदगी में, लेकिन अब ऐसे पोजीशन पे पहुंचा हुआ है कि उसको कोई कुछ कह ही नहीं रहा, बल्कि उसी को कह रहे हैं तू बरों पर निकाल, तू बैठा ना तू अच्छा आदमी है। तो ये कैसे हो रहा है ये चीजें। तो हमें मतलब बाहर निकल के जो भौतिक जीवन की रेस है उससे हमें एक कदम बाहर निकल के एक बार खड़े हो जाओ, देखो कि कैसे चक्री घूम रही है। और आपको समझ में आ जाएगा कि यार सब किस्मत से गाड़ी एक्चुअली चल रही है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा हुनर कुछ आ गया, कोई सुपर इंटेलिजेंट थे कि जिससे आपने कोई बड़ी कमाल की कोई चीज इजाद कर दी, या कोई कमाल का आइडिया लेके आ गए करोड़ों रुपए कमा लिए। बकवास है, आपके भाग्य में थे, भगवान ने एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी, अपॉर्चुनिटी दे दी, आपने पैसा कमा लिया, बात खत्म हो गई। और कोई लॉजिक नहीं है इसके अतिरिक्त, कोई और लॉजिक नहीं। कितना ही दिमाग लगा लो इसके अलावा और कुछ बात समझ में नहीं आ सकती। सो अगर ऐसा है तो जितना आराम से शांति से जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे बॉम्बे में सुबह 6 बजे निकल गए, रात को 12 बजे आए, फिर 6 बजे निकल गए, 12 बजे फिर 6 बजे निकल गए। अरे क्या कर रहे हो भाई। और उनको प्रैक्टिस हो जाती है, उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है जो सिर्फ एक जानवर में ही है। घोड़ा, घोड़ा सबने देखा ना, घोड़ा, घोड़े में क्या गुण है, खड़े खड़े सो जाता है वो। बॉम्बे के लोग हैं उन्होंने वो घोड़े का गुण विकसित कर लिया, वो ऐसे पकड़ा होगा उन्होंने ऊपर से खड़े खड़े सो जाते हैं। अरे यार ये जीवन क्या इसके लिए मिला है क्या कि घोड़े की तरह घोड़े का गुण अपने में ले आओ, नहीं कि खड़े खड़े सोने का। यार हाँ हम तो देखो जी, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ट्रेन में चढ़ते हैं खड़े होते ही सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब स्टेशन आ गया, एकदम फ्रेश रहते हैं। इसमें कौन सी मतलब तुमने यार आसमान तोड़ के रख दिया सामने, क्या बकवास है, छोड़ो यार पूरा जीवन वेस्ट कर दिया। जो आपके भाग्य में आपको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप सब कुछ छोड़ के घर में बैठ जाओ तो भी जो आपके भाग्य में आपको मिलेगा, लेकिन आप छोड़ के नहीं बैठ सकते। पूछो क्यों, कौन बताएगा, चलो मैं पूछ लेता हूं क्यों। हाँ ये गारंटी है आपकी किस्मत में, अगर 1 लाख रुपया लिखा है आप घर में बैठे रहो 4 पैसे नीचे मत उतरना, 1 लाख रुपया आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन आप ये कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, आदत है, अज्ञान की छतरी खोली हुई है, और स्वभाव आदत, स्वभाव है आदत है, और कुछ बताओ। कर्म के बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप, हम आपको बोल रहे हैं कर्म के बिना रह लोगे, चलो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाओगे, करना नहीं चाहिए। चलो आप
हो सकता है बैठ भी जाओ, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि कर मत लेना ऐसे, आप ऐसे करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? खाली दिमाग शैतान का घर, ये भी एक बात है। ये चीज तभी फलीभूत होगी जब आपकी पूरी श्रद्धा होगी इस बात में। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है इस बात में कि जो मेरे भाग्य में मुझे मिलेगा ही, अगर एक दो दिन लेट हो गया और दिमाग खराब हो जाएगा, आप बोलोगे कहाँ फंस गया, क्या हो गया भैया, जीवन बर्बाद हो गया मेरा। ये करने के लिए बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत श्रद्धा होनी चाहिए कि ऐसा ही होगा। बहुत मजबूत श्रद्धा होनी चाहिए। अगर वो श्रद्धा है तो सही है। इसका एग्जाम्पल है, हमारे शास्त्र में एग्जाम्पल आता है कि रसिकानंद प्रभु का नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है ना? रसिकानंद प्रभु बहुत ही महान आचार्य हुए, और एक राजा थे, उनको मारने के लिए उन्होंने एक हाथी छोड़ दिया उन पर, मदमस्त हाथी। मदमस्त हाथी का मतलब पता है किसी को? हाँ, और नहीं, अब देखो आप लोग बचपन से यूज कर रहे हो मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी मतलब किसी को नहीं पता।
जो काम के वशीभूत होते
हैं। और बताओ मद, मद का मतलब क्या होता है? मद से मदिरा बनी ना, शराब है ना। तो मदमस्त हाथी क्या होता है? जब हाथी बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है तो उसके माथे से एक लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं मद। अगर उस हाथी के, किसी हाथी के मस्तक से अगर वो लिक्विड निकल रहा है, द्रव्य जो निकल रहा है अगर पदार्थ, तो उसके सामने मत जाना कभी, क्योंकि उससे पूरा पगलाया होता है वो हाथी। उसको बोलते हैं, उस पदार्थ को बोलते हैं मद। और जिसके वो मद निकल रही है उसको बोलते हैं मदमस्त हाथी। उसके सामने जाना मौत को दावत देना है बेसिकली। तो उसने एक मदमस्त हाथी छोड़ दिया रसिकानंद प्रभु को। रसिकानंद प्रभु के साथ बहुत सारे उनके शिष्य भी थे। तो जब उस हाथी ने अटैक किया, एकदम दूर से दौड़ के आ रहा था, उधर से रसिकानंद प्रभु आ रहे थे और इधर अपने शिष्यों के साथ में, और इधर से वो हाथी दौड़ के जा रहा था उनको कुचलने के लिए। तो रसिकानंद प्रभु के साथ जितने भी साथी थे, शिष्य थे, सारे दौड़ के भाग गए, सारे भाग गए दौड़ के। और जब वो हाथी रसिकानंद प्रभु के पास पहुंचा, रसिकानंद प्रभु ने कहा बैठ जाओ, बोले हरे कृष्णा। तो हाथी ने क्या बोला? क्या बोला? हरे कृष्णा। बात कर रहा हूँ। तो सारे शिष्य आए शर्मिंदा होके, गुरु जी का सामना कैसे करेंगे। तो ऋषिकानंद प्रभु ने कहा अच्छा किया तुम भाग गए, अच्छा किया तुम भाग गए, मुझमें पूरी श्रद्धा थी, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे हृदय में भी परमात्मा है और उसके हृदय में भी परमात्मा है, तो परमात्मा मेरा अहित नहीं होने देंगे। लेकिन तुम में ये श्रद्धा नहीं थी, इसलिए अगर तुम खड़े रहते तो ये हाथी तुम्हें कुचल देता, मुझे कुछ नहीं करता। इसीलिए जितनी हमारी श्रद्धा है उसके लेवल पे काम करना चाहिए, और इस बात को हमें विकसित भी करते रहना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। उससे अगर आप जितना इस बात को अपने दिमाग में डेवलप कर लोगे, विकसित कर लोगे, आप देखना उतने ही आप शांत और सुखी होते चले जाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी जीवन में। यही भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार, भगवान ने हमारे लिए इतनी योजना बनाई थी, ये ठीक है। इससे ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस बात को भागवतम के एक श्लोक में लिखा। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? दसवें अध्याय के, दसवें स्कंद के चौदहवें अध्याय के आठवें श्लोक में ब्रह्मा जी ने क्या बोला? तत्तेनुकम्पात् सुसमीक्षमानः भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकः। ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि जो भी आपके साथ स्थिति है उसको सहर्ष स्वीकार कर लो। उसको ये मत सोचो कि यार कुछ और होना चाहिए था, भगवान मेरा ध्यान नहीं रख रहे, भगवान को शायद मेरी परिस्थिति के बारे में पता नहीं है, अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो कुछ और कर लूंगा। बेकार है। आप जितना जरूरी प्रयास है थोड़ा बहुत अपना प्रयास करते रहो, आराम से काम करते रहो और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अधिक महत्व दो। अपने जीवन को धीरे धीरे ऐसे चेंज करो, एकदम से चेंज मत करो, धीरे धीरे ऐसे चेंज करो कि आपके जीवन में भौतिकता का महत्व घटता जाए और आध्यात्मिकता का महत्व बढ़ता जाए, है ना। यही बात अगर हम समझ लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे, धीरे धीरे हम सुख और शांति का अनुभव करना शुरू कर देंगे। यही तरीका है सुखी और शांति रहने का। और इससे सुख और शांत तो रहेंगे हम और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, अगर टाइम देंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो भगवान को हम ज्यादा भगवान की सेवा कर पाएंगे और सेवा के माध्यम से भगवान को हम ज्यादा प्रसन्न कर पाएंगे। जब ज्यादा प्रसन्न कर पाएंगे तब हम भगवान की ज्यादा कृपा मर्सी मिलेगी भगवान की, और आप जल्दी हो सकता है इसी जन्म में भगवान के धाम जाने का सौभाग्य मिल जाए, है ना। तो अपने जीवन को इस तरह से बिताओ और हमेशा ये याद रखो कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की स्पेशल अरेंजमेंट से हो रहा है, और बहुत ज़्यादा दौड़ने की भागने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि इसको बोलते हैं आध्यात्मिक जो इंटेलिजेंस है, कि आपने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया लेकिन आराम से आपका जीवन चलता रहा। मैं एक और व्यक्ति को जानता हूँ, वो हालांकि डिवोटी नहीं थे लेकिन आध्यात्मिक योगी टाइप थे काफी। वो कभी ऑफिस ही नहीं जाते थे, सरकारी ऑफिस में नौकरी करते थे, अब तो उनकी डेथ हो गई। सरकारी ऑफिस में जॉब करते थे, वो कभी ऑफिस नहीं गए। तो उनको कई वो कभी मन आता था तो चले जाते थे ऐसे हालचाल पूछने के लिए लोगों का, और वो सब ठीक ठाक है ना, ऑफिस अपनी जगह खड़ा हुआ है। और जिसने भी उनके रास्ते में कांटे बोने की कोशिश की वो खत्म हो गया वो बंदा। तो लोगों के दिमाग में डर आ गया, भैया कुछ भी कर लेना इससे पंगा मत लेना। क्योंकि लोगों को लगा यार इसमें योगिक शक्तियां हैं, वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे, अपना अपना ध्यान में लगे रहते थे, वो जो भी ध्यान करते थे। तो भगवान जब ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो हमारी भी रक्षा करेंगे। और इस भावना को डेवलप करना, इस भावना को विकसित करना, इसका पोषण करना, ये भक्ति पुष्ट करने के 6 लक्षणों में से एक लक्षण है। नहीं, कौन सा है? रक्षयिष्यति विश्वास, है ना। रूपा गोस्वामी ने 6 लक्षण दिए कि भक्ति आगे बढ़ाने के, भक्ति में आगे बढ़ने के क्या 6 लक्षण है, क्या 6 लक्षण है जिससे कि भक्ति आगे बढ़ेगी। और उसमें एक लक्षण है कि क्या श्लोक था, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना रक्षयिष्यति विश्वासो गोप्यत्वे वर्णन तथा। तो जब रूप गोस्वामी ये 6 लक्षण बता रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के, उसमें से एक लक्षण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना कि भगवान सदैव हमारी रक्षा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितना हम इसका विकास करेंगे उतना ही हम ये सोच सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की।